किम सत्कर्म भीर भवेत। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य बंध मोक्षा अनुदर्शनम विविक्त पदम अज्ञाय किम सत्कर्म भीर भवेत। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य बंध मोक्ष अनुदर्शनम विविक्त पदम अज्ञाय किम सत्कर्मर्भिर् भवेत्। ऐश्वरम ईश्वर का ज्ञान या कृष्ण भावनामृत लाना, शास्त्रम वैदिक साहित्य, उत्सृज्य त्याग कर, बंध बंधन का, मोक्ष तथा मोक्ष का, अनुदर्शनम विधियों की सूचना देना, विविक्त पदम आत्मा को पदार्थ से पृथक करना, अज्ञाय न जानते हुए, किम असत कर्म भी भवेत, क्षण भंगुर सकाम कर्मों का क्या लाभ हो सकता है। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। नारद मुनि ने हंस की बात की थी, इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक ग्रंथ भलीभांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। निसंदेह वे इन दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में हैं। यदि मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगे रहने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा। तात्पर्य है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक साहित्य को आधुनिक भाषाओं में, विशेषतया अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा जर्मन जैसी पाश्चात्य भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए अति उत्सुक है। पाश्चात्य जगत के कर्णधार अमरीकी तथा यूरोपियन आधुनिक सभ्यता की प्रतिमाएं बन चुके हैं, क्योंकि भौतिक सभ्यता की प्रगति के लिए पाश्चात्य लोग अस्थायी कार्यों में अत्यंत कुशल हैं। किंतु विवेकवान व्यक्ति यह देख सकता है कि सारे भव्य कार्य यद्यपि नश्वर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु शाश्वत जीवन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। सारा जगत पश्चिम की भौतिकतावादी सभ्यता की नकल कर रहा है, अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन मूल संस्कृत वैदिक ग्रंथों का पाश्चात्य भाषाओं में अनुवाद करके पाश्चात्य लोगों को ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक रुचि रखता है। विविक्त पदम द्योतक है जीवन के लक्ष्य से संबंधित तार्किक प्रवचनों के मार्ग का। यदि जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसकी विवेचना नहीं की जाती तो मनुष्य अंधकार में जा गिरता है और जीवन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो फिर ज्ञान में प्रगति करने से उसे क्या लाभ। पश्चिम के लोग अपने छात्रों को हिप्पी बनते देख रहे हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय पश्चिम के लोग अपने छात्रों को हिप्पी बनते देख रहे हैं, यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भव्य प्रबंध है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन गुमराह नशीली दवाओं के अभ्यस्त छात्रों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें मानव समाज के लिए कल्याण कार्यों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो हैं हम सबके लिए टॉनिक हैं, दवाई है, और ऐसे तात्पर्य जो हैं जिसने प्रभुपाद जी की पुस्तक एक दफे पढ़ी वो फिर दूसरी किताब को चख नहीं पाएगा, गारंटी है। मन ही नहीं करेगा, उसका आनंद ही नहीं आएगा। आप कहीं की किताबें ले आइए, याद रखना आप, या तो उसमें हिंदी इतनी टफ होगी या विवेचना ऐसी कर रखी होगी कुछ समझ से परे है। समझाता वही अच्छा होगा जो खुद समझा बढ़िया होगा। तो प्रभुपाद जी कितना बढ़िया समझे हैं कि हम लोगों को कितना बढ़िया समझा देते हैं। एक मिनट में क्रिस्टल क्लियर, कोई भी वो नहीं है, भ्रम नहीं है। जैसा अभी मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ऐसा ही अनुभव जो है भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन जी भी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक की महिमा में। भगवद गीता यथारूप शिला ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा वह पुस्तक है जो मेरी आज तक की पढ़ी पुस्तकों में श्रेष्ठतम है और अद्भुत है। मतलब जितनी किताबें पढ़ी उन्होंने, क्लिंटन ने, अपने पैदा होने से लेके मरण तक, तो उसका कहने का मतलब ये अद्भुत है और श्रेष्ठतम है। ये एक जो पूर्ण रूप से भक्त नहीं है उसकी बात है, जो भक्त हैं उनकी बात का कोई बात ही छोड़ दीजिए आप। है नहीं? तो ये जो है प्रभुपाद जी का गुणगान है वास्तव में। तो यहां पर जो है हम लोग प्रसंग जैसा कि सुनते आ रहे हैं, अजामिल का प्रसंग सुनने के बाद परीक्षित महाराज जी ने अजामिल के प्रसंग में हरिनाम की महिमा सुनी और फिर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि कृपया इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें। सुखदेव गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि जीवों और सृष्टि के विषय में कैसे जीव और बढ़े आगे। तो उस प्रसंग में जो है सुखदेव गोस्वामी जी जो है इतिहास सुना रहे हैं, किनका? राजा प्राचीन बरही के पुत्रों के पुत्र का। राजा प्राचीन बरही के पुत्र कौन थे? प्रचेतागण। मैं थोड़ा फ्लैशबैक रिकैप कर रहा हूं हल्का सा, फिर इसी में आ रहे हैं श्लोक में। तो राजा प्राचीन बरही के जो है वो भी बहुत फंसे हुए थे राजा प्राचीन बरही, लेकिन जो है उनको भी नारद मुनि ने क्या किया? निकाल दिया। नारद मुनि ने जो है इन सबको निकाला है, स्वयंभू मनु के पूरे परिवार को निकाला, ध्रुव महाराज जी को निकाला, सबको निकाला, लेकिन दक्ष को नहीं निकाल पाए क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता था। समझ रहे नहीं? प्रभुपाद जी सारी दुनिया को भक्त बनाए लेकिन अपने परिवार को भक्त नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि भक्त बनना नहीं चाहते हैं, घर का घी दाल बराबर है नहीं, और उसको महत्व भी नहीं दिया कि क्या व्यक्ति है। तो कभी कभी हम व्यक्ति के संग में रह के भी नहीं समझ पाते हैं कि उसकी क्या महत्ता है, हम उसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो राजा प्राचीन बरही के जो 10 पुत्र हुए प्रचेतागण, आप लोगों को पता ही है वो कैसे समुद्र में तपस्या करने के लिए गए थे और जब बाहर आए तो देखा, उन्होंने क्या देखा कि सारी पृथ्वी जो है वृक्षों से भरी हुई है। तो उन्होंने उसको नष्ट करने के लिए जो है अग्नि और वायु इसको उत्पन्न करना चाह रहे थे, लेकिन वनस्पति के जो देवता हैं सोम वो प्रकट हुए, उन्होंने बोला ऐसा मत करो क्योंकि यही हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, सब कुछ बढ़िया से। तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए जो है स्वर्ग की जो प्रमलोपचा अप्सरा है उससे जो उत्पन्न एक सुंदर कन्या को जो है दिया उनको, किनको? प्रचेतागणों को, और ये भी बोला कि तुम इनसे विवाह कर सकते हो और आगे जो है पुत्र उत्पन्न कर सकते हो। तो प्रचेतागणों से और ये प्रमलोपचा की जो पुत्री थी स्वर्ग की अप्सरा जो है, तो इनसे इनके वीर्य से जो है किनकी उत्पत्ति हुई? दक्ष की उत्पत्ति हुई, है नहीं? और दक्ष का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? एक्सपर्ट, पटु। किस चीज में पटु? जो संतान उत्पन्न करने में पटु है, भोगों में एक्सपर्ट है जो। और लेकिन प्रभुपाद नारद मुनि का भी उदाहरण बता रहे हैं, नारद मुनि पटु हैं भवसागर से निकालने के लिए, भोगों से दूर करने के लिए पटु हैं, एक्सपर्ट पर्सन। और नारद का अर्थ क्या हुआ? नारद का अर्थ है वह जो भगवान को दे सकता है। नारद का मतलब इधर से उधर लगाने वाला नहीं। ये जो सांसारिक लोग, मूर्ख लोग जो व्याख्या करते हैं, क्योंकि जितनी बुद्धि है उनकी, लोटे जैसी बुद्धि है तो लोटे जैसी सोच है फिर, है नहीं? तो छोटी सी बुद्धि से क्या वो भक्त को समझ सकता है जो एक माला तक कभी किया नहीं, भगवान का दर्शन कभी प्रणाम किया नहीं, न कभी चरणामृत पिया, न कभी तुलसी की परिक्रमा लगाई, न कभी भागवत सुना, वो क्या व्याख्या करेगा भक्त के बारे में? बताइए, भक्त की क्या स्थिति है, और वो भी नारद जैसे भक्त की। दक्ष जो है पिछले जन्म में शिवजी का भी अपमान किए थे, और शिवजी ने उनको क्या किया, उनके उनके सर को काट के उसको क्या बोलते, बकरे का सर लगा दिया उसमें, उस शिवजी को, क्योंकि शिवजी जो है बैरागी थे। दक्ष की पुत्री कौन थी? सती, पार्वती जी। तो उनको बड़ा बुरा, पार्वती जी ने तो वो सुन करके ही शरीर त्याग दिया अपना, लेकिन इन्होंने भी, ये तो भोगों को भोग भोगने के लिए जो है शरीर त्यागे, फिर तपस्या करके जो है इन्होंने, और तपस्या में भी क्या इच्छा थी, क्या इच्छा थी बताइए, संतान उत्पन्न करने की। बड़ा सुंदर यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कि तपस्या करने के बाद भी इनकी इच्छा क्या थी, कि पूर्ण रूप से जो है ये भोगों में रत रहे, लेकिन इन्हें तपस्या की थी और भगवान की तपस्या की थी, इसलिए भगवान ने इनको संपन्न किया ऐसे कि तुम हजारों संतानें, लाखों संतानें उत्पन्न कर सकते हो। आप सोचिए, नहीं तो यहां दो संतान और चार संतान, छह संतान उत्पन्न करने में क्या बोलते हैं, क्या हालत होती है उसके बाद उनको पालने में। और यहां दक्ष ने जो है पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, ठीक है कि नहीं? और उन्हीं 10,000 पुत्र जो हैं, जब वो समुद्र के किनारे पवित्र स्थान पर गए और वहां पर शुद्ध हो रहे थे, लेकिन अपने पिताजी की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन वो ऐसी जगह गए थे जहां पवित्र आत्माएं, परम संत लोग जो हैं भजन करते थे, और इनका हृदय शुद्ध हो रहा था। तो नारद मुनि जो है ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसीलिए भक्त भी ऐसे लोगों को खोजते रहता है संसार में, कौन व्यक्ति ऐसा है, समझ रहे नहीं, कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के बारे में सुनने के लिए लालायित है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं, हमको फोन क्यों नहीं आया, तुम्ही को क्यों आया? तुमको इसलिए आया भैया, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसलिए तुमको फोन आता है, जो इंटरेस्टेड है नहीं, तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। प्रभुपाद जी कहते भी थे कि मुझे पता चल जाए कि कोई व्यक्ति सुनने का इच्छुक है, सुनने के लिए लालसामयी है, और वो विदेश में क्यों ना हो, मैं अपने पैसे खर्च करके जहाज से जाऊंगा और उसको वहां हरी कथा सुना के आऊंगा, भक्त बना के आऊंगा। और प्रभुपाद गए, 40 रुपए लेकर के गए, और करोड़ों लोगों को भक्त बनते जा रहे हैं और बनते जाएंगे 10,000 सालों तक, जब तक कि बदमाश लोग जो हैं, आज विजय हुई है, बहुत बड़ी विजय, कल विजय हो गई, भगवद गीता क्या कर दिया, वो पूरा मतलब यस चलेगा भगवद गीता करके जीत हुई है उसमें, जो भगवद गीता के ऊपर आया था ना। और दरअसल भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे भगवद गीता एज इट इज क्या होए, प्रचार होए। मेरे को बहुत आनंद आता है, जैसे मराठी में है ना, जसी आहे तसी, मतलब जैसी थी वैसी ही, जसी आहे तसी, कितनी सुंदर उस वर्ड है, ऐसे गुजराती में भी है। तो प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान प्रचार करना चाहते हैं पूरे विश्व में जो है, मीडिया के द्वारा जो है पूरे विश्व में भगवद गीता एज इट इज इस्कॉन का प्रचार कर दिया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, विरोधी जितना शोर शराबा करेंगे ये इस्कॉन आंदोलन उतना ही आगे बढ़ेगा। कोई दम मारो दम मिट जाए गम क्यों ना बोले। लेकिन उसके बाद हरे कृष्ण हरे राम, चलो इतना तो हरे कृष्ण हरे राम से होना, बोले बिल्कुल है। वो अंदर आके उसको एकदम दूसरी दुनिया, वो सोचता है, कभी कभी कुछ लोग प्रभु जी यहाँ सुल्फा मिलेगा बोलता है, सुल्फा एक व्यक्ति मेरे पास आके, क्योंकि ये तो आप लोगों की ही पिक्चर बनाई ना, मैंने कहा मैं असली सुल्फा पिलाऊंगा तुमको, आ जाओ। अंदर आया, चरणा में उसको पिलाया और मैंने कहा बैठना है, जो कह रहे हैं उसको करना है, माला करनी है और ये पुस्तक लो, बस हो गया। उसने ऐसा सुल्फा पिया, फिर वो और सुल्फा पीने लायक नहीं रहा, असली भक्त बन गया। हम सब सही में ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ को कोई पकड़ भी लेगा, छू लेगा, केवल स्पर्श कर लेगा, क्योंकि ये ग्रंथ साधारण नहीं है। ये ग्रंथ जो है भागवत को भी बता रखा है, भागवत के द्वादश स्कंध भगवान के शारीरिक पूरे शरीर से तुलना कर रखी है, और भगवत गीता के भी प्रथम पांच अध्याय भगवान बोलते हैं मेरे मुख जानो, आगे के 10 अध्याय मतलब 6 से लेकर 15 तक मेरी भुजाएं जानो, 16वां मेरा उदर जानो, 17वां और 18वां मेरे दो चरण कमल जानो। तो भगवत गीता में और भगवान में अंतर ही नहीं है, कोई पढ़े ना पढ़े, केवल घर में पड़ी रहेगी तो भी ये नजर सुरक्षा कवच का काम करेगी, समझ रहे नहीं? सारी वेप्स भगवत गीता पड़ी है, जहां गीता का वास होता है वहां भगवान होते हैं, वहां प्रयाग आदि तीर्थ, प्रयाग में 3 नदियां बहती, गंगा जमुना सरस्वती, वो साक्षात वहीं पर उपस्थित रहती हैं। क्योंकि आप नदियों में स्नान तो करके आ जाओगे पवित्र, लेकिन अंदर का स्नान कहां से होगा? लेकिन भगवत गीता रूपी गंगा जल में अगर कोई व्यक्ति कान से स्नान कर लेगा, अगर सुन लेगा, तो भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए नित्य हमें, अगर वास्तव में कोई सबसे बड़ा कार्य हमारा है जीवन में भक्तों का, तो भागवत को पढ़ना है। अगर हम भागवत नहीं पढ़ सकते, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, ठीक है कि नहीं, क्या बता रहे हैं आज के तात्पर्य में, कि हम सब भक्तों का कार्य क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्या करे, अगर किसी के पास में, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर इसको पढ़ने का, इस साहित्य को पढ़ने का समय नहीं है, समझ रहे नहीं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है, कोई है? तो भौतिकतावादी व्यक्ति जो हैं अपने दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रण दिए हैं, क्योंकि वो भगवद गीता और भागवत को ताक पर रख दिए, ताक पर मतलब साइड रख दिए, सब ये सारे ग्रंथों से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल भौतिक भोगों में उनकी रुचि है। और ये भागवत इसीलिए हमें संसार से निकालना सिखाती है। भागवत का उद्देश्य क्या है? संसार से निकालना। भागवत के जितने प्रसंग हैं, आप जितने भी प्रसंग पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य है हम जो हैं संसार में जो फंसे हुए हैं, हम इंद्रिय तर्पण में लगे हुए हैं, और हमारा जो इंद्रिय तर्पण से, तर्पण मतलब भोगों में, और उस तर्पण से क्या हो गया है, हमारा मन मलिन हो गया, एकदम बिल्कुल गंदा हो गया है, और उस गंदे मन से आप जो है सबको आकलन कर रहे हो, वो ऐसा होगा, उस कहां रस है, क्योंकि तुम्हारे अंदर रस नहीं है, तुमने रस वाली चीज का सेवन कभी किया ही नहीं। सेवन किया होता तो पता चलता ना। तो ये भागवत सुनना मतलब ये सेवन करना है, ये रस वाली, मुह रहो रसिका भूवि भाव कहा, ये रसज्ञ लोग जो वास्तव में रस लेना चाहते हैं कृष्ण के रस को, इसलिए क्या बता रखा है, 4 प्रकार के, यहां पर परम हंस की, इस श्लोक में जो है हंस की बात बताया जा रहा है, कि हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है, मतलब बंधन और मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है, कि बंधन इस संसार के हर कार्य से, हर कर्म से क्या होता है, हमें बंधन मिलता है। प्रत्येक कार्य जो भगवान के लिए, जो यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको अयम कर्म बंधन, सोने से लेकर उठने तक, उठने से लेकर सोने तक जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अगर शास्त्रों के अनुसार, गुरु गुरांग के अनुसार नहीं हो रहा है, तो वह प्रत्येक कार्य हमको बांध देगा और बंधन, और फिर हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति मतलब कैसा, कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, हम मतलब भगवान में मिल जाना चाहते हैं, बस हो गया, मुक्ति का मतलब भी ये है। या हम सोचते हैं कि सारे कष्टों से हम छुटकारा मिल जाए, इसको ही मुक्ति मान लेते हैं, बस ये नहीं है। भगवत प्रेम मिलना असली मुक्ति है। इसलिए यहां पर जो है, जब भागवत की, कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन किया है भागवत में, भागवत की महिमा में, तो 2 प्रकार के श्रोता माने गए, उत्तम और अधम। तो उत्तम की भी 4 प्रकार की वैरायटी बता रखी है, उत्तम श्रोता की कौन कौन सी वैरायटी है, चातक, पहला आंखें खोलिए गए हैं, बोलिए सब लोग, चातक, हंस, शुक और मीन, और जो अधम है उनकी भी बता रखी है, ब्रिक, भुरुंड, ब्रिश और ऊट, उष्ट्र। तो अब आप चातक को जो उत्तम श्रोता हैं उसमें से पहला ले लीजिए चातक। तो चातक कहते हैं पपीहे को। पपीहा क्या करता है, वो दूसरे जल को छूता भी नहीं है, चाहे पानी के प्यासा मर जाए। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों की ही चर्चा करता है, शास्त्र में बहुत कुछ है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। श्रोताओं में भी ऐसे श्रोता, ऐसा चातक जो अन्य जल को छुएगा ही नहीं, मतलब अन्य शास्त्रों की उसको कोई वो नहीं है, जो भागवत, भगवत गीता, जो श्री कृष्ण के, जो अगर पुराणों को भी छुएगा तो वो छह पुराण, जो विष्णु पुराण, मतलब जो सात्विक पुराण है, जो श्री कृष्ण संबंधी बात बताते हैं, जो सार तत्वों को बात बता रहे हैं, उसको चातक श्रोता बताया गया है। तो सब छोड़कर के श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों का श्रवण का व्रत ले लेता है चातक पक्षी। पता है व्रत क्या लेता है, कि वह जब बादल गरजेंगे तो उससे जो पहली बूंद टपकेगी वही पीऊंगा, ये व्रत ले रखा, नहीं तो मर जाऊंगा लेकिन जल नहीं पीऊंगा। ये चातक जो है श्रोता है। और उसके बाद आया हंस। तो हंस श्रोता कैसा है, जो दूध के साथ मिले हुए जल को अलग कर देता है। दूध, अगर दूध में जल है, बताइए आप अलग कर सकता है किसी के पास इतनी मजाल, लैक्टोमीटर में उसमें पता चलता है कि कितना पानी है कितना दूध है, लेकिन वो भी अलग नहीं कर पाएगा। ऐसी मशीन नहीं हो पाई अभी तक, ऐसी वैज्ञानिकों ने मशीन ही नहीं, देखिए भक्त इतने दक्ष हो जाते हैं, एक्सपर्ट, कि वो दूध में से पानी निकाल सकते हैं, पानी में से दूध निकाल सकते हैं, सार वस्तु निकाल सकते हैं। कौन निकालेगा बताइए, नहीं निकाल सकता है। तो क्या बता रखा है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें सार भाग अलग ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। अगर वो शास्त्रों को पढ़ता भी है, कभी शास्त्रों को कब पढ़ता है, जब पहले सारी प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ा देते हैं, पढ़ ली, बोले एक दफे पढ़ी, बोले दो दफे और पढ़ो, रसराज श्री कृष्ण से लेकर के चैतन्य चरितामृत तक, चार दफे पढ़ ली, बोले पढ़ ली, अब पढ़ सकते हो 18 पुराण, कोई चिंता नहीं है, अब पढ़ सकते हो आप और भी किताबें, रसीली किताबें, रस वाली किताबें इधर उधर की, ठीक है कि नहीं, पढ़ो। प्रभुपाद ने जो रस दिया है, मैं सच बता रहा हूं, हमने सारी किताबें पढ़ी भगवत कृपा से, सारे अवसर आए हैं यहां जाने का, गौड़ी मठ से भी कितने बुलावे, राधा कुंड से कितने बुलावे, मेरे और मोहन पापा को, हम लोगों को कब के वहां बुलावे, बुलावा थे पहले, हम लोग पहले 15-15 दिन के लिए जाते थे, प्रभु जी और मैं दोनों जो हैं 15-15 दिन राधा कुंड में रहते थे, एक कुटिया लेकर के महानदी महाराज जी के संरक्षण में भी, सारा कुछ देखा है। लेकिन जो यहां आनंद है, सच बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, नहीं तो भ्रमण में बड़ा कष्ट है प्रभु जी, यहां सब पका हुआ माल मिल रहा है, सब पका हुआ, सब कुछ, एक टॉपिक निकालना है नेट से निकाल लीजिए, गंगा के ऊपर टॉपिक निकाल, सारा टॉपिक निकल के आ गया, कहां से उत्पन्न हुई, किस किस कहां गए, देखा जाए ये भी आलसियों का वैसे काम, वैसे निकालना चाहिए अलग अलग जगह, तब पढ़ने का अवसर मिलता है इतना, सच बता रहा हूं, मैं तो अभी भी निकालता हूं, नेट से तो मैंने खोला ही नहीं अभी, परसों जो है रिलायंस का हमने वो इंटरनेट लिया है, परसों नहीं 5-6 दिन हो गए, और अभी तक मैं अंदर बॉक्स में ही है वो, क्योंकि सारे रजिस्टर बनाए हुए हैं, लाइफ मेरे का रजिस्टर, श्रद्धावान के रजिस्टर अलग हैं, और क्या बोलते हैं भगवत गीता वाला रजिस्टर अलग है, उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, सामने रजिस्टर पड़ा हुआ निकालो इसमें, और नेट में बैठो अलग जाकर के, कितना लंबा चौड़ा सब, मेरे को अभी भी आनंद नहीं आता है नेट वेट में सब, और नेट बड़ा खतरनाक, इसमें नेट में जो है खतरनाक, ऐसा खतरनाक है कि बुरी चीजें सबसे पहले माइंड में रहती हैं, कि उसमें ये भी आता है, वो सबसे पहले उसको देखना सोचेगा, वो कब देखूं इसको मैं बस, और एक दफे देखा नहीं हुआ पतन, बस वहीं से वही चीज, क्योंकि हम संसार में ज्यादा रहे हैं, इस संसार में अनेक जन्मों से रह रहे हैं हम लोग, और भगवत भक्ति 2 साल 3 साल 4 साल, उसमें भी कभी एकाध माला की, कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी आरती में आए कभी नहीं आए, क्या अभ्यास है, वो ज्यादा याद है, ठीक है कि नहीं, एक मिनट में पतन होगा, एक मिनट में, विद इन ए सेकंड पतन हो जाएगा, गारंटी है। और फिर उठना, फिर दक्ष की तरह नारद मुनि को, जब नारद मुनि ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को भक्त बनाया, उन्होंने फिर 1,000 उत्पन्न किए समझ रहे नहीं, वो गोलोक चले गए, धाम चले गए, तो फिर 1,000 उत्पन्न किए, उनको ही भक्त बना दिया। बाप रे बाप। उसके बाद जब नारद मुनि से मिले दक्ष, ये भौतिकतावादी भोगी व्यक्ति, देखिए क्या उत्तर देते हैं। प्रजापति दक्ष ने कहा नारद मुनि को, जब उनको ही भक्त बना दिया, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु वास्तव में तुम संत हो नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें नारद जी को देखी, उनको भी सुनना पड़ता है, प्रचारकों को याद रखना चाहिए, हम ही नहीं, मैंने ऐसा सुना, कुछ नहीं सुना तुमने तुमने क्या खाक सुना, तुम्हें तो केवल स्वागत मिला हुआ है बस। नारद मुनि को बोल रहे, तुम संत नहीं हो, खाली वेश धारण कर रखा है बस, यद्यपि अब मैं गृहस्थ जीवन में हूं किंतु मैं संत पुरुष हूं। ये जो है दक्ष बोल रहा है, मैं संत पुरुष हूं, तुमने मेरे पुत्रों को संन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। ठीक है, प्रजापति दक्ष ने आगे भी कहा, चुप नहीं हुआ वो, कहते जो सुनो अभी अभी, बिल्कुल बोलना नहीं है, मेरे पुत्र अपने 3 ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे कि तुमने उनको क्या कर दिया, भक्त बना दिया। अब मैं अपने पुरखों का जो उन्होंने बताया था, संतान उत्पत्ति करना, कुल परंपरा बचाना, वो कुल परंपरा के चक्कर में लगे हुए हैं। नारद मुनि कुल परंपरा खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि अब परंपरा छोड़ दो, बस हो गया, तुम्हारी बड़ी एक ही परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम वर्ष, वो परंपरा है ये कृष्ण भावनामृत की, भगवान से चली आ रही परंपरा, इसमें आ जा, जन्म मृत्यु का चक्कर से छूट जाओगे। बोले नहीं नहीं, इसमें नहीं आना है, वही देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण और ऋषियों का ऋण भरना है। नारद मुनि बोलते हैं, भाई भगवान की शरण लेने से देव ऋषि नाम भूताप्त नृणाम नायमणि चक्कींकरम राजन सर्वात्मना यह शरण्यम शरण्यो गतो मुकुंद परिहृत कर्तम। जिसने भगवान मुक्ति के दाता मुकुंद की शरण ले ली है, वो जो है ये तीनों ऋणों से, देवताओं के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, भूतों के ऋण से उऋण हो जाता है। ये नारद बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, सारे संत बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की शरण मूल है, सारे देवी देवता वहां पर प्रणाम करते हैं। आप लोगों को किसी का ऋण रहा बताइए, जब से हम प्रभु की शरण में आए हैं तब सब ऋण उऋण, कोई ऋण रहा ही नहीं, समझ रहे नहीं, बल्कि कहीं ऋण भी था वो भी बोलता है प्रभु जी सब सेवा में लगा देना ले लीजिए आप, सच में जितने ऋण थे सब दे दिए हो, सब उल्टा देते हैं लोग, कहां का ऋण रह गया बताइए, कोई ऋण नहीं रह गया। तो ये हमारा जो भूत जो है ना, हम सोचते हैं कि यहां पर बता रखा है, ऐसे पिता की बात को भी जो है क्या कर देना चाहिए, क्योंकि जो केवल संसार की चीज को वो भगवान की भक्ति के लिए बिल्कुल वो एक ये मनुष्य जीवन मिला है, वो यही बोल रहा है बेटा तू जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्कर में बढ़िया से घिर जा, अगर ये प्रशिक्षण देने को तैयार है, अगर बाप और माँ चाहे भाई बंधु हो चाहे ये संसार हो, तो ऐसे करोड़ों बाप माओं को त्यागने के लिए हम तैयार हैं, यह है कृष्ण भक्ति। क्योंकि जो हमको निकालेगा, जिससे हम वास्तविक शांति में चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, बताओ वो ज्यादा जरूरी हमारे लिए, ये ज्यादा जो फंसा रहा है हमको। तो ये इन इन ये जो थोड़ा कड़क बात है, ये कड़क बात, तो इसको बुरा नहीं मानना। तो आगे भी बोलते हैं नारद, रे नारद मुनि, रे, अब गुस्से में भी शुरू हो गया, रे साक्षात पाप कर्म पापी, अब पापी बोलने लगे, देखिए ऐसे ऐसे बात कर रहे नारद मुनि से, तुमने इस जगत में उनके सौभाग्य की प्रगति में बाधा डाल दी, कितने सौभाग्यशाली थे वो, तपस्या करके शादी करते सुंदर सुंदर कन्याओं से और फिर एक गाड़ी लेते ठीक है कि नहीं, और उस गाड़ी में कड़ाक टेस्ट घूमने जाते, यही भाव है और क्या भाव है, पिक्चर देखने जाते हम, तब हम कहते कि कितने हमारे बेटों ने उन्नति की है, देखो 2 घर बनाते और हमें घर घर से लात मार के भगा देते, कितना अच्छा होता। इसको सौभाग्य समझ रहे हूं, सौभाग्य देखो। दूसरी बात यह है कि अभी भी वे संत पुरुषों देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी हैं। आगे भी कहा, इस तरह अन्य जीवों के प्रति हिंसा करते हुए भी अपने को भगवान विष्णु का पार्षद कहते हो तुम, तुमने हिंसा की है मेरे पुत्रों को भक्त बना करके, तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो, तुमने व्यर्थ ही अबोध बालकों में संन्यास की प्रवृत्ति उत्पन्न की है, इसीलिए तुम निर्लज्ज हो, दया से रहित हो। तुम भगवान के निजी संगियों के साथ किस तरह विचरण कर सकते हो। हमें भी याद है प्रभु जी की बहने हृदय रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी की बहने अब सब भक्त हैं, वो भी बोलती थी दीननायक की शकल नहीं देखनी है। मुझे याद है अच्छे से, समझ रहे नहीं, ऐसे मोहन बाबू के लिए बोलते थे उनकी भी, मतलब एकदम हेट करते थे। लेकिन आज हेट से हेट करते, भक्तों से घृणा भी करोगे ना तो भक्त बन जाओगे। यहां सारा पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं सब। कितना कितना जो है आप यानी कि हेट करोगे, नहीं कर सकते हो हेट, समझ रहे नहीं। भक्त हेट करने पर भी जो है आपको गले लगाते हैं, मार खाइवे प्रेम दीवे, ये भक्तों का स्वभाव है। तो एक नहीं ऐसे अनेक भक्त लोग, कितने भक्त लोग तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, बोलते उनसे क्या बात करें, वो हमारी सुनता ही नहीं है। जब देखो अपनी ही बोलता रहता है, हमने एक चीज बोला तो अपनी चीज बोल देता है, ऐसा करो। उसका कहने का मतलब है हमारी चीजों को ही समर्थन कर, हां ठीक कहते हो, समझ रहे नहीं। इसीलिए दक्ष ने आगे पता है क्या किया, समय हो गया है, आगे क्या किया, श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा कहीं घर ना बसे नारद मुनि को, और तुम्हारा कहीं भी मकान ना रहे, तुम एक जगह टिक ना पाओ। नारद मुनि को श्राप दिया है। नारद मुनि बोलते हैं धन्य हो, यही तो मैं चाहता हूं कि मेरा कहीं घर ना रहे, मैं तो वीणा बजाते हुए, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। आगे दो श्लोकों के बाद यही भजन है, पूरा पूरा आगे दो श्लोकों के बाद ये गाइएगा, और उसका अर्थ ही है तात्पर्य में प्रभुपाद जी के द्वारा, ठीक है कि नहीं। कितना सुंदर, राधिका रमन का नाम लेकर नारद मुनि जो हैं जहां जाते हैं वहां सबको, नारद का मतलब वह जो कृष्ण को दे सकता है, और जो इस संसार की जो बहुत ही पुनसाम मिथुनाम स्त्री भावित जो हृदयम जो ग्रंथि है ना, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वो नारद जैसे परम संत का दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, उस ग्रंथि को भेद सकता है और सच्चा भक्त बन जाएगा भगवान का। इसी जीवन में उसको भगवान मिल जाएंगे। और इतनी ये जो इच्छाएं हैं ना, इनको शुद्ध भक्त के संग में आकर के ही मिट सकती हैं। ये ध्रुव महाराज पिता से भी बड़ा राज्य पाना चाहते थे, मां के पास गए, कहां मिले, कौन देगा इतना बड़ा राज्य, बोले भगवान दे सकते, बोले कहां मिलेंगे, बोले जंगल में मिलेंगे, चले गए जंगल में, और नारद मुनि वहां भी पहुंच गए, देखो भगवत इच्छा से। पता है उत्सुक व्यक्ति है, सकाम भले ही कामना से आया हो, लेकिन उनको पहले डराया, जब डराने के बाद भी देखा पक्का है, तो उनको मंत्र प्रदान किया द्वादश, और भगवान का वर्णन करके उनको बोला कि ऐसा ध्यान करो। पहले महीने में उन्हें थोड़ा बहुत पत्तियां लेते थे, अगले महीने में जो है क्या बोलते हैं जल पीना, जल में रहते थे, अगले महीने फिर कंदमूल में, अगले महीने फिर क्या किया उन्होंने, केवल हवा में रहे, और फिर हवा भी बंद कर दी लास्ट महीने में, और एक पैर में खड़े हो गए। तो हवा बंद करने से क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की हवा रुक गई, सारे देवी देवता भगवान को बोले कि प्रभु जल्दी दर्शन दो, तो हमारी हवा रुक जाएगी। तो हम सब, क्योंकि हवा रुक ही रही थी, सारे पशु पक्षी जो है विह्वल हो रहे थे हवा के बिना। भगवान प्रकट हो गए, जैसा ये सोच रहे थे वैसे ही भगवान सामने प्रकट हुए, समझ रही नहीं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त, इसका मतलब क्या है, ये था माम प्रपद्धन्ते ताम तथे भजाम्य हम। दक्ष जी भोगों को मांग रहे हैं, भगवान भोग दे रहे है कि नहीं। आपको क्या चाहिए वही भगवान। कभी कभी मेरे से कितने लोग, एक दफे हमारी धर्मपत्नी जी भी पूछ रही थी कि इतना धन कैसे दे देते हैं इन लोगों को। मैंने कहा महंगाई वही है, जब महंगाई वही तो इसलिए धन ही धन दिया है, अपने को कहां दिया है, एक मिनट समय नहीं है, दस फोन, इधर से फोन आ रहा है उधर, वो फिर उसमें गाना निकाला किस को फोन करूं मैं, बस हो गया, वो फोन उठा रहा है, बस हो गया, फोन पे फोन, पागल है, विचलित आत्मा है एकदम। मतलब उससे ज्यादा दुखी कौन है, एक मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकता है, उससे बड़ा निर्धन व्यक्ति कौन है संसार में। एक मिनट में मृत्यु सर्वहरश्च, हम भगवान लात मारेंगे और सबको धारण कर लेंगे, जो दिया था क्या बचेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं नारद मुनि के प्रसंग में कि मेरे को भी श्राप मिला हुआ है ये युवक और युवतियों के माता पिता द्वारा, मैंने बहुत जल्दी इन लोगों को टकला बना दिया था, सब कोई 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 ग्रेजुएशन कर रहा था उसके बीच में ही पकड़ा गया, कोई एमकॉम में था, कोई कहां था, सबको। तो तो इनके माता पिता ने भी श्राप दिया मैं ज्यादा नहीं टिक पाऊं एक जगह, इसलिए मैं टिक नहीं पा रहा हूं। मैं भी जो है भ्रमण कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मेरा थोड़ा बहुत ये श्राप जो है मेरे शिष्य लोग ले ले, ताकि मैं एक जगह किताबों का क्या कर सकूं, अनुवाद कर सकूं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे तात्पर्य में, है नहीं? तो कितना सुंदर ये है, प्रसंग है। कहने को तो बहुत कुछ है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर क्या बोलते हैं विराम दे रहा हूं, एक मिनट लेकर के। अच्छा, 9 बज गए एकदम, बिल्कुल फिट हो गए 9:50। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 8:50 तक था, मैं 9 बजे तक लिया इसलिए। जी
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रवचन। प्रभु जी आपने बताए थे, श्रोता बताए थे सब
जी जी जी, हाँ वो उसमें क्या बोलते हैं, चातक हो गया, हंस हो गया, और हंस के बाद है शुक और मीन। शुक मतलब जो तोता, तोता जो है क्या होता है वो सोता और वक्ता, वो दोनों को प्रसन्न करता है। शुक तोता का ही बता रखा है कि जो कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक तोता कहलाता है। जिस ढंग से सुना है उसने, उसी ढंग से सुंदर तरीके से सुना देता है, तो जिससे खुद भी प्रसन्न होता है, परंपरा भी प्रसन्न होती है, और जो सुन रहे हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। तो इसको शुक तोता, शुक जो है श्रोता बता रखा है। और आगे मीन है, तो मीन जो है जैसे शीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निमिष बता रखा है बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाता हुआ देखते हुए मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता है, निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करते रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहलाता है। ठीक है कि नहीं? आगे है अधम श्रोता। अधम में जो है ब्रिक, ब्रिक मतलब भेड़िए को कहते हैं। अब जो लोग डिस्टर्ब करते हैं कथा में, अधम श्रोता, वो क्या है, भेड़िया वन के भीतर बेलों की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है। वैसे ही जो मूर्ख कथा के बीच में रसिक श्रोताओं को बीच बीच में जोर से बोल उठता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है स्वामी जी, ठीक है कि नहीं? तो वो जो है वो भेड़िए की तरह है, वह ब्रिक कहलाता है। और आगे भुरुंड, ये हिमालय में पाया जाता है पक्षी भुरुंड नाम का, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोल दिया करता है एकदम, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुने, सुनकर दूसरों को तो सिखाए लेकिन आचरण में ना लाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग दूसरों को कैसे सुनाना है उसके लिए भुरुंड की तरह हम लोग कभी कर लेते हैं ना, लेकिन आचरण में जो है नहीं लाए, बस कैसे बढ़िया से बढ़िया प्रवचन हो जाए, कभी कभी ये भी एक बात होती है, उसके लिए जस्ट नोट करते हैं, वो भुरुंड श्रोता कहलाता है लेकिन आचरण में नहीं लाता है। और बैल कहते हैं, बैल के सामने अंगूर रख दो चाहे खली रख दो, उसके लिए सब बराबर है। चाहे प्रेम की बात करो, चाहे लालसामयी प्रार्थना करो, चाहे दैन्य प्रार्थना करो, उसे क्या मतलब, क्या कथा सुनाई, बोले ठीक है सब ठीक था बस हो गया, को तो आज से भागवत, बोले ठीक है देखेंगे देखेंगे सोचेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आया मतलब बस तो बैल है वो, चाहे उसके आगे अंगूर रखो चाहे खली रख दो, एक ही मान करके वो जो है। और ऊंट जो है क्या करता है, वो आम को छोड़ करके केवल नीम की पत्ती में बैठता है। ऊंट सोता क्या करता है, कभी कभी मोबाइल में लग जाता है, ठीक है कि नहीं? ऊंट वो थोड़ी देर कथा सुनेगा लेकिन उसको लगेगा मतलब की बात नहीं हो रही है, कितना कड़वा लग रहा है देखो, या फिर और उठ करके चला जाएगा, फिर अच्छा नहीं है, रूम में बड़ा अच्छा है, ऊंट श्रोता है और क्या। उसके बाद नीम को चखने के लिए, संसार नीम है कड़वापन, उसको मोबाइल अच्छा लगेगा या फिर कथा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, उधर बाहर जो है उस वक्त शुद्ध जप चलता है, कभी कभी मैंने देखा है कथा के समय में, जप के समय में गप, और उस वक्त शुद्ध जप चल रहा है एकदम, ये गलत बात है, कथा के समय कथा सुननी चाहिए। और किसी का प्रश्न? जी प्रभु जी, अभी तक यही रिप्रेजेंटेटिव बता रहा था, तो बाद में फिर खोल देंगे, ठीक है कि नहीं? और कोई? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप सब लोग श्रवण कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है ये भगवद गीता वितरण कीजिए। आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि पूरा वेस्ट दिल्ली में हरेक के घर में गीता हो? कितने लोग चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए। लेकिन हम बोलते प्रभु जी पिछले साल 32 लेके तो गया था, वो पड़ी हुई है। मैंने कहा पड़ी क्यों है बताओ, वो पड़ी क्यों है, उनको बांटा क्यों नहीं? चाहे आप उसको पैसों में ही बांटो, है कि नहीं? हमारे मन में हम सुनेंगे तो उत्साह बढ़ेगा, है नहीं? और तभी जो है हम निकलेंगे भी। और जो नहीं निकल सकता है वो खाली सुन करके बोल दे रहा है बस, हाँ प्रभु जी हर घर में गीता होनी चाहिए, लेकिन उसके पड़ोस में गीता नहीं है, क्या लाभ बताइए? प्रचार का मतलब बांटना है, ठीक है? हरे कृष्ण,
धन्यवाद।